स्वागत है इस विशेष चर्चा में। आज हम पूज्य गुरुदेव श्रीराम शर्मा आचार्य जी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्बोधन पर बात कर रहे हैं। ये अखंड ज्योति पत्रिका में प्रकाशित हुआ था और शीर्षक है परिष्कृत तपःपूत वाणी से होते हैं चमत्कार। अक्सर हम सोचते हैं कि भाई शब्दों में या शायद मंत्रों में कोई ऐसी जादुई शक्ति होती है, पर यहां बात शायद कुछ और गहरी है।
बिल्कुल, पूज्य गुरुदेव यही समझाते हैं कि वाणी की जो शक्ति है ना, वो सिर्फ बोले गए शब्दों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि वो बोलने वाले के जीवन, उसकी तपस्या, उसकी शुद्धि, उस पर टिकी है। उन्होंने हिम्मत और मनोबल का उदाहरण भी दिया, जैसे कोई साहसी व्यक्ति अकेला ही सही अपने दम पर प्रभाव डालता है।
हाँ,
ठीक वैसे ही तप से जो परिष्कृत व्यक्तित्व बनता है उसकी वाणी असर करती है। ये सिर्फ मतलब गले का व्यायाम नहीं है, ये तो चरित्र का आईना है।
चरित्र का आईना। तो ये समझना बड़ा दिलचस्प होगा कि कैसे ये जो सामान्य जप अनुष्ठान हम करते हैं उससे ऊपर उठकर वाणी को असल में प्रभावशाली, यहाँ तक कि चमत्कारी कैसे बनाया जा सकता है। क्या सिर्फ मंत्र दोहराते रहना काफी नहीं है?
देखिए, पूज्य गुरुदेव इस पर बहुत साफ कहते हैं, केवल मंत्र गिनना या जैसे तोते की तरह दोहराना वो काफी नहीं है। जब तब सार्थक होता है जब उसके पीछे एक संकल्प हो, एक दिलेरी हो और अनुशासन हो, मतलब जीवन में एक तरह की कड़ाई हो।
कड़ाई यानी अनुशासन?
हाँ, अनुशासन। अनुष्ठान इसीलिए तो महत्वपूर्ण है क्योंकि वो व्यक्ति को नियमों में बांधते हैं, उसे तपाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मान लीजिए हथौड़े की चोट खा खा कर लोहा फौलाद बनता है, बिना इस आंतरिक तप के जब बस एक बाहरी क्रिया रह जाता है।
अच्छा, इसमें पूज्य गुरुदेव ने जिह्वा यानी हमारी जीभ, उसके संयम पर भी काफी जोर दिया है। उन्होंने अपने 24 साल के लंबे अनुष्ठान का जिक्र किया जिसमें खान पान और वाणी दोनों पर बहुत कठोर नियंत्रण रखा था। ऐसा क्यों? इसका क्या महत्व है?
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये एक तरह से जीभ को पकाने की प्रक्रिया है, जैसे तलवार को तेज करने के लिए उसे घिसना पड़ता है ना। इसके दो मुख्य पहलू हैं। पहला है आहार की शुद्धि।
आहार की शुद्धि
जी, और इसमें सिर्फ सात्विक भोजन लेना ही काफी नहीं है, वो भोजन ईमानदारी की कमाई का होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है क्योंकि देखिए, जैसा अन्न वैसा मन बनता है और जैसा मन वैसा ही व्यक्तित्व। पूज्य गुरुदेव साफ कहते हैं कि पाप की कमाई से, गलत तरीके से कमाए अन्न से बनी जीभ में मंत्र फलीभूत नहीं हो सकता, उसमें वो शक्ति नहीं आ सकती।
अन्न से मन, मन से व्यक्तित्व और उसका असर वाणी पर, ये तो समझ आया। लेकिन फिर बोलने के तरीके का क्या, उसका भी इस शक्ति से कोई लेना देना है?
निश्चित रूप से, बिल्कुल है। ये दूसरा पहलू है वाणी का तप। कम बोलना, सोच समझ कर बोलना और सत्य बोलना, लेकिन हमेशा प्रिय और विनम्रता से बोलना, ये भी तप है।
अच्छा, सत्य भी प्रिय और विनम्रता से?
हाँ, अनावश्यक गपशप, अहंकार से भरी बातें या दूसरों का अपमान करने वाली वाणी, ये सब वाणी की शक्ति को खत्म कर देते हैं, उसे दूषित करते हैं। पूज्य गुरुदेव ने श्रृंगलेशी का उदाहरण दिया है। उनकी वाणी में इतनी शक्ति थी कि उनके श्राप ने एक मरे हुए सांप को जीवित कर दिया और वही राजा परीक्षित की मृत्यु का कारण बना।
हाँ, वो कथा तो सुनी है।
तो ये शक्ति सिर्फ शब्दों की नहीं थी, ये उस ऋषि के तप की थी, उनके पूरे व्यक्तित्व की, उनके जीवन की शुद्धि की शक्ति थी।
तो इसका मतलब ये हुआ कि नाम या मंत्र जपने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है जपने वाले का अपना आचरण, उसका जीवन। जैसे वो वाल्मीकि जी का उदाहरण भी दिया जाता है जिन्होंने मरा मरा जप कर भी सिद्धि पाली थी।
बिल्कुल सही पकड़ा आपने। वाल्मीकि जी हों या फिर गणिका हों, अजामिल हों, सदन कसाई, इन सब के उद्धार का कारण सिर्फ नाम लेना भर नहीं था, बल्कि नाम लेने के साथ साथ अपने जीवन को पूरी तरह से बदल देना था। एक ऋषिकल्प जीवन यानी ऋषि जैसा पवित्र जीवन अपनाना था। पूज्य गुरुदेव ने उस अफ्रीकी तोते का भी जिक्र किया था जो गायत्री मंत्र बोलता था, या वो गांव के ठाकुर साहब थे जो जानवरों की तरह तरह की बोलियां निकाल लेते थे। पर वो क्या है, वो तो सिर्फ नकल है, उसमें कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं होती।
तो ये योग्यता और आध्यात्मिक शक्ति में फर्क है। जैसे राजा परीक्षित वाली बात आपने कही, उन्होंने कथा सुनने के लिए इतने बड़े विद्वान व्यास जी की बजाय बालक सुखदेव को चुना।
हाँ बिल्कुल, क्यों चुना? क्योंकि बालक सुखदेव की वाणी उनके वीतराग व्यक्तित्व के कारण, वीतराग मतलब जो संसार के राग द्वेष मोह माया आकर्षण विकर्षण से पूरी तरह मुक्त हो चुका हो, ऐसे निष्कलंक व्यक्तित्व की वाणी कहीं ज्यादा कल्याणकारी और प्रभावशाली थी। तो पूज्य गुरुदेव का सार यही है कि अध्यात्म कोई जादू टोना या कर्मकांड की हेराफेरी नहीं है, ये असल में व्यक्तित्व को परिष्कृत करने का, उसे गढ़ने का विज्ञान है।
इस पूरी चर्चा से जो निचोड़ निकल रहा है वो ये है कि वाणी की असली शक्ति, वो चमत्कार करने की क्षमता बाहरी कर्मकांडों में उतनी नहीं है जितनी वो व्यक्ति की आंतरिक शुद्धि, उसके अनुशासन और चरित्र की पवित्रता में छिपी है।
एकदम सही। संक्षेप में कहें तो अगर हम अपनी वाणी को प्रभावशाली, शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो सिर्फ मंत्रोच्चार पर ध्यान देना काफी नहीं है। उसके साथ साथ अपने आहार की शुद्धि, अपनी कमाई की पवित्रता, अपनी वाणी का संयम, मतलब सत्य बोलें, प्रिय बोलें, हितकर बोलें, विनम्रता से बोलें और सबसे बढ़कर एक अनुशासित तपःपूत जीवन जिएं। व्यक्तित्व जितना निखरेगा वाणी में उतना ही ज्यादा वजन आएगा, उतनी ही शक्ति आएगी।
तो आज की चर्चा से ये एकदम साफ है कि सच्ची शक्ति अंदर से आती है, बाहर से नहीं। अब सोचने वाली बात ये है कि हम सब अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपनी बातचीत में, अपने रहन सहन में वो कौन से छोटे छोटे बदलाव ला सकते हैं जिनसे हमारे शब्द सिर्फ खोखले न रह जाएं, बल्कि उनमें वास्तव में कुछ सार्थकता आए, कुछ प्रभाव पैदा हो। अगली चर्चा तक इस पर विचार करते रहिए। ओम शांति ही।